चार पाए काटा फूटे ना इसे की कोने जानवे সেই জন্য গদাধর ইয়ে রাধারানী তিনি গদাধর পণ্ডিত হয়ে আসলেন, আর মহাপ্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং মহাপ্রভু আসলেন। তো রাধাজি গদাধর পণ্ডিত বন করকে আয়ে, আর কৃষ্ণ স্বয়ং মহাপ্রভু বন করকে আয়ে, এক দূসরো কো ঠোকা ঠোকি বচপন মে পড়তে লিখতে সময় এক দূসরো কো প্যার আড়া করকে বলে বলো ব্যাকরণ কাজ সূত্র বলা এটা ছোড়েগে নাই। তো ইস তরহ সে ঠোকা ঠোকি লাগতা তা পরস্পরে ঠোকা ঠোকি লাগে, আর একজন অপরকে ছেড়ে তো চল থাকতে পারে না। সেই জন্য বললেন গৌর গদাধর কি প্রা, মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন গদাধর পণ্ডিত তিনি সঙ্গে গেলেন, মহাপ্রভুকে ছেড়ে তিনি থাকেন না। আবার সেই গদাধর পণ্ডিত তিনি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিলেন, জগন্নাথপুরী মে যা করিকে উনোনে ক্ষেত্র সন্ন্যাস লে লিয়া, মে পুরী ছোড় করকে নহীঁ যাউঙ্গা। মহাপ্রভু একদিন বালু হটাইতে হটাইতে এখন বললেন গদাধর তুমি একটা জিনিস নেবে আমি দেব, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি দিলে আমি নেবো না কেন, সঙ্গে সঙ্গে বালু সরিয়ে একটি মূর্তি বার করলেন, গোপীনাথ মূর্তি। সেই গোপীনাথ অতি সুন্দর গোপীনাথ মূর্তি বার করে তার হাতে দিলেন, সেই থেকে গদাধর পণ্ডিত তিনি সেবা করতে লাগলেন। গৌর গদাধরের সেবা এ গোপীনাথের সেবা করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ৪৮ বছর লীলা করবার পরে সেই গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহে অন্তর্ধান হলেন। এইভাবে গৌর গদাধর একই প্রাণ আর একই স্বরূপ, সেই জন্য গৌরীয় পরম্পরায় যেমন গৌর নিত্য অপরদিকে হলো গৌর গদাধর মধুর রসের বিগ্রহ, যেখানে উন্নত উজ্জ্বল মধুর রসের ভাব প্রকাশিত হয় সেই গৌর গদাধর শ্রীবিগ্রহ এখানে সেবিত হচ্ছেন। আরো আমরা এখানে জানতে পাই কবি জয়দেব গোস্বামী ১২শ শতাব্দীর সময়ে যখন বাংলার মধ্যে সাধু বলে কেউ ছিল না, যদি সাধু দেখতে পাওয়া যায় কাপালি তান্ত্রিক মরার খুলিতে মন খায় আর তন্ত্র মন্ত্র সিদ্ধি করে কালীর উপাসক এইসব সাধু ছিল। সেই সময়ে সেই কালে লক্ষণ সেন যখন আসেন সেই সময়ের কথা, তখন কবি জয়দেব গোস্বামী তিনি ছিলেন মাতা পিতার তারা পরম ভক্তিমান, তিনি রাধা কৃষ্ণের পরম ভক্ত। সেই মায়ের থেকে তিনি সংস্কারকে পেয়ে গেলেন, সেই রাধা কৃষ্ণের ভক্তিতে তিনি ডুবে গেলেন। যখন পাত্রে তাও সেই সময়ে তার মাতা পিতা পরলোকে চলে গেলেন, তারপরে রাধা কৃষ্ণের লীলা চিন্তনের সর্বক্ষণ তিনি ডুবে আছেন। তাকে সকলেই জানে যে জয়া পাগলা, যে পাগল পাগল ছেলে তাই গাছের তলায় নদী অজয় নদীর তীরে গাছের তলায় বসে থাকে, কেউ তাকে জানতে পারে নাই যে সে যে পরম বৈষ্ণব। তারপরেই এখন হলো কি দক্ষিণ ভারতের এক কন্যা পদ্মাবতী, যাহাকে জগন্নাথের মানত করে তাহার মাতা পিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যে জগন্নাথ দেবের সামনে তাকে ভেদ দিলে এখন বড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাহাকে জগন্নাথকে দান করে নাই। একদিন খুব জ্বর হয়েছে, সেই সময় কিছুতেই আর ভালো হয় নাই, সেই সময়ে জগন্নাথ দেব নিজেই ব্রাহ্মণ এসে ভিখারী রূপে আসলেন। ভিক্ষা নিতে গিয়ে এখন ভিক্ষা যখন দিচ্ছেন সেই ব্রাহ্মণ বললেন আমার ঘরে একটা বিপদ নেই, আমার কন্যাটির কিছুতেই জ্বর ভালো হয় নাই, অনেক দিন হয়ে গেল, কি করি কি উপায় করি আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তখন তিনি বললেন আপনি তো মানত করেছিলেন জগন্নাথ দেবকে দান করবেন, কোথায় এখনো তো আপনি দান করলেন না, ওকে দান করে দিন জ্বর ভালো হয়ে যাবে। শুনেই সেই ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে গেল, ব্যাপার কি জানলো কি করে? এটা তো আমি ছাড়া কেউ জানে না। তারপরেই দেখা গেল যে ওই ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপরেই তখন তাদের বিশ্বাস হলো। সেই সময়ে জ্বর ভালো হয়ে গেল দুই একদিনের মধ্যেই, কয়েক দিনের মধ্যে তাকে নিয়ে পুরী ধামে আসবে। কি করে দান সংকল্প করতে হয় তাও তো জানা নাই। এখন জগন্নাথের পূজা অর্চনা করে তিনি ওই স্থানে থাকতে লাগলেন। রাত্রিকালে জগন্নাথের স্বপ্নেতে আদেশ দিলেন, যাও বীরভূম জেলায় কেন দেবেন আনন্দিত হয়ে আসেন। এই স্থানে বীরভূমে সেই কেন্দ্রবিল্ল গ্রামেতে সেই জয়দেবের হাতে সমর্পণ করছে। সেই থেকে জয়দেব গোস্বামী তিনিও পরিবর্তিত হয়ে গেলেন এবং অজয় নদীতে সেইখানে রাধা মাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত করেন। সেই বিগ্রহকে পেয়ে তিনি সেবা করতে লাগলেন। যেমন পদ্মাবতী তেমনি কয়েকটি অদ্ভুত সঙ্গী, অদ্ভুত কীর্তন, অদ্ভুত পদ এবং সেবা পরিচর্যা, যাহা তারা সকলেই তৃপ্ত হয়ে গেলেন। সেই বর্ধমানের একজন রাজা সেখানকার মন্দির নির্মাণ করেন, আজও যে মন্দির নিদর্শন রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তো এইভাবে কবি জয়দেব গোস্বামী বাংলার বুকে তিনি পরম বৈষ্ণব কবি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। কিন্তু রাজা লক্ষ্মণ সেন তা সহ্য করতে পারল না। তার গুরুর আদেশে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিল। কিন্তু রানী লাল সেনকে ডেকেই বললেন, যাও এখন পুরী পাঠাও, কোনো মতেই এই অন্যায় কাজে হতে দেওয়া যাবে না। যে যারা রাধাকৃষ্ণের ভজন করবে তাদেরকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে, এমনই বাংলার এই শাসন। সঙ্গে সঙ্গে রানী প্রতিবাদ জানাইলেন। তারপরে কবি জয়দেব গোস্বামী এবং পদ্মাবতী তারা দুইজনে গিয়ে জগন্নাথপুরীতে কিছুকাল নিবাস করেন। সেই স্থান থেকে আবার যখন বাংলায় আসলেন, লক্ষণ সেন ডাকলেন যে আপনাদের আসতেই হবে। তখন তারা এসে এই নবদ্বীপে এই চম্পঘাট স্থানেতে এই স্থানে পর্ণকুটির বেঁধে এইখানে ভজন সাধন করে, আর এই স্থানে থেকে তিনি গীত গোবিন্দ রচনা করেন। লক্ষণ সেন এখন ছদ্মবেশে এসে সাধারণ বেশে এসে কবি জয়দেবের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেই থেকে বাংলার বৈষ্ণব কবি প্রথম প্রধান সঙ্গীতকার রূপে কবি জয়দেব পদ্মাবতী। কিন্তু কবি জয়দেব তিনি রাজভবনে যেতেন না, পদ্মাবতীকে কখনো কখনো সঙ্গীত কলার জন্য কম্পিটিশন যখন হতো তার জন্য পদ্মাবতীকে ডেকে নিতেন। তো এই স্থানে কবি জয়দেব তিনি রাধা গোবিন্দের লীলা বর্ণনে ডুবে গেলেন। আমার লীলা বর্ণনা করলেন বিশ্বের সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রূপে প্রমাণিত হলো। এমন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত হয় নাই। এখানে রাধা রানীর মহাভাব প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাজ অনুরাগ ভাগ মহাভাব রূঢ় অধিরূঢ় চিত্র জল্প সংজল্প আজল্প অভিজল্প বিজল্প তারপরে মোহ এরপরেও গিয়ে এখানে মাদনাক্ষ মহাভাবের কথা এসেছে। বিরহের মধ্যে মিলন, মিলনের মধ্যে বিরহ, সেই বিরহ বিরহের মধ্যে রাধা গোবিন্দের কিভাবে মিলন, কিভাবে লীলা স্ফূর্তি হয়, কিভাবে রাধা রানীর সামনে কৃষ্ণ সাক্ষাতে প্রকট হয়ে যান, সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে কবি জয়দেব গোস্বামী সিংহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠতম উন্নত উজ্জ্বল মধুর রথ ব্যক্ত করে গেলেন মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে। রাধা বলল
Mara jara la khanda na, ma সকলে বোধহয় সেই ভক্তি ভাব সেই ভক্তি রসচন্দ্র বিন্দু করে যেন আমরা প্রয়াসী হতে পারি। সেই লোক লালু সাহুদ কন্টা তুমি সকলের হৃদয় জাগ্রত করো। এই বলেই আজকে আমি আমার বক্তব্য এইখানে রাখছি।
গৌরাঙ্গ
Sri Gadadhara Pandit, he is the
definition that he is Sakat Radhika, Devorati Prasthi, we cannot, which is advanced even 1 inch in the pattern of Rajman. So we remember the thing of Sikhanana Pandit in this place. Also, this place is very famous for being the Bhagavad Gita of Sri Jayadev Goswami. Jayadev Goswami, his wife was Padmavati. Padmavati's parents were ordered by Jagannath Dev himself to give marriage to Sri Jayadev. Sri Jayadev Goswami had no material desires, but understanding this was the desire of Jagannath Dev, then he married. And he also lived here for some time. The king of Bengal at that time, his name was Sri Lakshman Sen. So he was very much desirous of having such a great devotee and poet like Jayadev Goswami in his assembly. Therefore, Lakshman Sen came here in the disguise of an ordinary person and begged Jayadev Goswami, please, you come to my palace. Jayadev Goswami, Chaitanya Mahaprabhu also told we should not have association with materialistic persons. So when Jayadev Goswami knew the king had come to see me, Jayadev Goswami wanted to leave Navadvip. But the king begged him, no, please, you stay here. I will build one bhajan kuti here for you, and you can do bhajan. Therefore, Sri Jayadev Goswami and his wife, Pavani, both stayed in this place, constantly remembering the past times of Sri Radha and Krishna. Jayadev Goswami was such an astonishing poet. He has written that great book, Sri Govinda. Such an exalted thing. If you read it a little bit, then you can understand. Jayadev Goswami, when he would see his meditation, he would rise. But one day, what did he see? He saw that Krishna had tried to break the mind of Srimati Radhika. Therefore, Krishna tried many, many ways to break her angry mood. Finally, Sri Krishna gave his flute on the feet of Radhika, he gave his pitamba, he gave his ornamental. But when he saw even that would not work, Srimati Radhika was still in mind. Then Krishna bowed and asked Radhika to put his feet upon his head. So Sri Jayadev Goswami is Rasik Vaishnava, but he is not Rasik like Rupa Goswami and Sanatan Goswami. Even Sri Jayadev Goswami had some Iswar Buddhi towards Krishna. This is the Supreme Lord, his brother Shaktiman, the possessor of unlimited potency. How is it possible that Radharani will put his feet on his head? And Jayadev Goswami, because of a little fact of all in reverence, he hesitated to write and cannot write. There was still Brahman Maharaj just to say. Even the great Rasik Vaishnava like Jayadev Goswami, he hesitated to write. But we are speaking that thing 50 times a day, so you can imagine that position. So Sri Jayadev Goswami, he left and he went, he said to his wife, I will go to the Ganga and take bath. So when he went to take bath at the Ganga, that time Sri Krishna himself came in the sky at all. Jayadev Goswami. The wife said, what are you doing, Padmavati? What are you doing? You just went for the Ganga? Oh, I have to write something, I forgot. Therefore, Sri Krishna, in his own hand, he wrote, Managala Kandanam, Dehi Mandanam, Dehi Padabha Palavam, Dhanam. Sri Krishna is saying, oh, Radhika, I am so much suffering in separation from you, being burnt by the fire of Cupid. Therefore, your lotus feet, this is like medicine. Therefore, please put that lotus feet on my head and cure it, take away all my suffering. So he wrote that with his own hand and left. Just like Sri Krishna performed Rasa Lila to manifest the greatness of Srimati Radhika, so here again, Sri Krishna with his own hand described the preeminent position of Krishmanu Nandini Dhirati. So when Krishna, in the form of Jayadev, went away, then Jayadev then came back from his bath. Then Padmavati asked, what are you doing? You came and you went. No, he said, I have not come and gone. But 1 minute ago, here you were writing something in your Jit Govinda, and he became astonished, and he saw that Krishna with his own hand had written. Then Jayadev Goswami, his voice choked, he fell on the ground and next deeply, and prayed to Padmavati Devi, you are so much fortunate. You have darshan of Krishna. I could not have darshan of Krishna. For he was such a great devotee. One time here, he was trying to put Ra on the roof of his house. Therefore, Jagannath Krishna could not tolerate the suffering of his deities, mother. Therefore, he came out and he was passing the grass under the roof while Jagannath Goswami was touching. And the deities' hands after were black with the color of their blood. Therefore, after some time, then it said that Krishna Krishna himself ordered Jayadev Goswami to go to Jagannath Puri. Therefore, Jayadev Goswami and Parvati, they were full of remorse. How we can leave such nectarian, Navadvip Dham? Because they had also seen the form of Gauranga in their darshan. Therefore, they did not want to leave Navadvip. But on the order of Jagannath there, they left Navadvip. When they turned back, they saw the form of Navadvip like a thousand subtle lotus. And weeping, they begged the residents of the Dham, please, we are offenders. Give us mercy that we can always reside, even of a bird, a leaf, a flower, an animal. What to speak of a human being in this holy myself tree? Navadvip. So Gauranga blessed them, you will always be here. And when I perform my pastimes, you will also be here in some form. That Chit Govinda is such an astonishing poet, form of poetry, that one time when one Devdasi in Jagannath Puri was singing Chit Govinda, then Jagannath Dev, he could not keep himself still, and Jagannath ran there to hear the Harikat, the song Chit Govinda. In the morning, the Pujari saw that the deity of Jagannath Dev had been scratched and his cloth was torn. They were high, they began crying. What happened? The king thought maybe the Pujaris had been neglectful. But Jagannath revealed in the dream of the king, I could not keep myself upon hearing Chit Govinda. Therefore, the king of Jagannath Puri gave an order. Chit Govinda cannot be sung outside the temple of Jagannath Puri. So much is attractive. Because as Krishna is all attractive, his Harikatha is all attractive. When Harikatha is spoken, then Krishna must be there in some form or another. Aham Kistani Vaikuntha Yoginam Jadiya Siva Satyakistapi Nasa Narada Satri Mati Bhakti Jayanti. Krishna says, I am not in Vaikuntha. I am not in the heart of the yogi. Satyakistapi Narada, O Narada, where do I always reside? That place where my devotee sings my Harikatha. Whenever Ramayana is spoken, Hanuman is there. So must be whenever pure Harikatha is there, Jirada and Krishna also must be in that place. Everyone Harikatha is spoken, everyone feels so much happy. Why? Because Bhagavan is there in the form of Harikatha. When Raghunath Bhatta Goswami would speak Bhagavatam, then Radha Krishna would call him to the audience to hear his Harikatha. So you can imagine what high class of Vaishnava was Jayadev Goswami. Then Chaitanya Mahaprabhu also, 500 years ago, once he also heard one lady singing Chit Govinda. Then Mahaprabhu became intoxicated and he began running there in the mood of Jagannath or Sri Krishna. That time Govinda, his servant, was running, but he could not keep up with the Lord, who was running faster than the mind. Then Govinda said, Oh Lord, it's a woman. Because Mahaprabhu was the ideal sannyasi. When he heard that, then Mahaprabhu stopped himself and said, Oh Govinda, he praised me. If I had touched a woman, I would have left my body. I would have given up my life. So this is the place of Sri Jayadev Goswami. This is the place of Sri Garada Pandit. So we ask for mercy, because Garada Pandit is even more merciful than Radhika. Because the associates of Gauranga are even more kind than the associates of Krishna. Therefore, here we call at the feet of Sri Garada Pandit and ask, please always give us a place at your lotus feet. This deity is very, very old. So we're so much lucky to come here. Chisati Nandan Gaura Hari Kopemanande.
Rastatra Guru. अज्ञान सिंजन सुज्ञान अंजन श्लाघ्या चक्षु नमन संज्ञान दर्शन विषय नो विष्णु बदाय राधिकाय प्रिया
नारायण का संयोग नाम है जैसे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. सबसे पहले मैं अपने बड़े पराक्रम का गुरुदेव हूँ इसके बाद सरयू जी का चार्य आज तो शक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उनके चरणों में मेरा जन्नत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा के जन्नत प्रणाम। हिंदी हिंदी भाषा सुनने वाले जरा अपना ध्यान और सांस थोड़ी देर के लिए दे लो, छिटके पिटके पड़े हो जरा कंसंट्रेट हो जाओ। ये सांस चंपा हटी है, इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया किस तरह से चंपक माता सभी ध्यान से सुंदर सुंदर चंपा के फूल और सुगंधित फूलों को इकट्ठा करके चुन के माला बनाती थी राधा कृष्ण के लिए। अभी तो यहाँ कोई फूल के पेड़ दिखाई नहीं दे रहे, तो उसका वर्णन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कैसे प्रकट हो गए। कुछ दिनों के बाद वो फूल धीरे धीरे माटियों ने चुनने शुरू कर दिए। पहले पहले तो सच्ची चुनती थी राजा कृष्ण के लिए, फिर माटियों ने चुनने शुरू कर दिए, फिर यहाँ पे उनके हाथ बन गए और बाजार में वो बिकने लग गए। जब वो बिकने लग गए फिर वो छुपने लग गए, और इसलिए आज वो बिकते बिकते हमारी आंखों से गोचर हो चुकी है। वैसे ये चंपक लगा है इसका और बड़ा सुंदर किलो भक्ति किलो ठाकुर जी ने वर्णन किया। ये जो चंपा हटी स्थान है, यहाँ पे एक समय जिनके से महाप्रभु के आने से पहले की बात है, जब जैसे गोस्वामी जी थे, मेरे ख्याल से 1100-1200 वर्ष पहले की बात होगी। हमें लक्ष्मण सेन करके राजा राज्य किया करते थे यहाँ, और लक्ष्मण सेन राजा के पास एक स्तंभ पहुंचा, सच अवतार का स्तंभ, और इतना सुंदर स्तंभ कि वो रोज खाने लगे। हम लोगों ने अनेक पुराणों में भगवान के अवतारों का वर्णन सुना है, लेकिन जिस तरह से जितने ही प्रीति से ये सच अवतार का वर्णन जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, और हर वर्णन में हर अवतार को भगवान कृष्ण का अवतार बताया, भगवान कृष्ण ने यह रूप लिया ये बताया, केशव रीता नर हरि रूपा। केशव ने नरसिंह का रूप धारण किया, केशव ने राम का रूप धारण किया, केशव ने बलराम का रूप धारण किया, और किस तरह से उन्होंने सारे अवतारों की हियारकी एकदम स्पष्ट करके दिखला दी कि मूल कौन है और अवतार कौन है, वंश कौन है। इसका अधिकतर हम लोगों को हमारे मस्तिष्क में बाहर चलिए कंफ्यूजन रहता है, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा सुंदर स्तंभ स्तुति सुनकर वो पूछने लगे, राजा पूछने लगे ये लिखा किसने है, तो बोलते यहाँ पे एक बड़े सुंदर कवि है जैसे गोस्वामी उनका नाम है और कृष्ण के भक्त है। तो राजा शुभकर वैष्णव धारण करके वेश जयदेव गोस्वामी जी की कुटिया में आए, और जयदेव गोस्वामी जी झट पहचान गए। देखो भक्तों में पहचानने की बड़ी ताकत होती है, और वो पहचान गए कि राजा आए हैं, और राजा ने थोड़ी देर में अपने को प्रस्तुत कर दिया, बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं ये चाहता हूँ आप मेरे राज्य में आए और मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाइए। तब जयदेव गोस्वामी जी मन ही मन सोचने लगे कि ये राजा तो मुझको अपने विषय दल को देना चाहता है। जयदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं आपका आपके मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं स्वीकार करना चाहता, मैं राज्य का पैसा ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं राजा का पैसा ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं विषय के पैसे से विषय के विष भरे पैसे से अपने को खराब नहीं करना चाहता, स्पष्ट बोल दिया। लेकिन राजा फिर धीरे धीरे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, ठीक है आप मेरे मंत्रिमंडल में नहीं आए तो कम से कम चंपा हाटी में आप आके रहिए, और मैं आपके लिए कुटिया बचा दूंगा, और फिर आपकी जब मर्जी होगी आप मुझे बुलाना और मैं आपके दर्शन करूंगा। उस समय जैसे गोस्वामी मुस्करा दी है, अरे राजा तुम वाकई कृष्ण भक्त हो, देखिए यहाँ सुनने और समझने वाली बात है। जयदेव गोस्वामी बोलते हैं राजन तुम वास्तव में ही कृष्ण भक्त हो, एक राजा को विषय कह दिया जाए और राजा उसे सहन कर ले तो समझ लो विपत्ति अर्थात जगन्नाथ रपी स्वामी चैन दरों रपी सहिष्णुता का गुण आ चुका है। तुम इतने सहनशील हो कि मेरे विषय कहने पर भी तुमने बुरा ना माना। तुम कृष्ण भक्त हो, आप जो कहोगे मैं करूंगा। आप मेरे लिए कुटिया बिछाओ, बना दो यहाँ पर, और आप जब भी चाहो राजा बनकर नहीं वैष्णव के वेश में आना, और मैं आपको अपने संग प्रदान करूंगा। और इस तरह से बहुत अच्छा चलता रहा। एक बार उनकी पत्नी पद्मावती सुंदर सुंदर चंपक फूल ग्रहण करके पता नहीं कितने भाव से वो चुनती होगी कृष्ण के लिए, आंखों में आंसू भरकर अपने पति को दिए। और पति उन फूलों को जब भगवान को अर्पित कर रहे होते तो क्या देखते हैं कि कृष्ण का रंग उसी समय काले से गोरा होने लगा, और उनको सुंदर भगवान के स्वर्ण स्वर्ण छटा रूप वाला दर्शन हुआ, यानी स्वयं महाप्रभु जी ने उन्हें दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन किया, पत्नी ने भी किया, पति ने भी किया। दर्शन करते ही मूर्छित हो गए, आंखों में आंसू करके उनके चरणों में उनको घोषणा रहा। महाप्रभु ने दोनों को ही उठाया और उनसे कहा कि तुम लोगों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें दर्शन देने के लिए उत्कर्षित क्रोध किया। ऐसे भक्त की भावना हो कि खुद भक्त के भक्ति के कारण भगवान दर्शन देने के लिए उत्कंठित हो जाए। तुम्हारा गीत गोविंद नाम का ये ग्रंथ जो तुमने लिखा है मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम यहाँ से नीलांचल चले जाओ और नीलांचल जाके रहो और अपना प्रेम इतने आशीर्वाद देकर महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। जब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए उस समय दोनों अपने होश में आए और रोने लगे। अरे महाप्रभु ने हमें नवदीप धाम छोड़ने को कहा, लगता है हमसे कोई धाम अपराध हो गया, भगवान नहीं चाहते हम यहाँ रहे। रो रो के चिपट गए नवदीप धाम से। इसे प्रेम कहते हैं नवदीप धाम के लिए, हम इसे कैसे छोड़ेंगे। उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करते हैं, आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई, अरे तुम चिंता न करो, तुमसे कोई काम अपराध नहीं हुआ है। भगवान इसलिए चाहते हैं कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ। देखो यहाँ एक और विचार दिया, कुछ दिन पहले जब राजा कहते थे कि तुम मेरे मंत्रिमंडल में आ जाओ तो जैसे स्वामी सोचने लगे यहाँ राजा के विषय विष को लेने से अच्छा है हम लोग नीलांचल चले जाए। नीलांचल जाने का भाव जैसे स्वामी के हृदय में उस समय आया था तो आकाशवाणी ने कहा तुमने चाहा था ना नीलांचल जाने के लिए, तो इसलिए वो चाह तुम्हारी पूरी करने के लिए महाप्रभु ने आदेश दिया। दूसरा ये कि जगन्नाथ जी खुद तुम्हें देखने के लिए आतुर हुए पड़े, तुम्हें जाओ वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन करो और उनको दर्शन दो। ऐसा सुंदर वर्णन है। हमने ये देखा है कि अगर भक्ति में अनजाने में भी कोई संसारी इच्छा या इधर उधर की इच्छा आ जाए तो वो इच्छा पहले पूरी होती है, भक्ति थोड़ी पीछे चली आती है। जैसे गोस्वामी जी ने थोड़ी सी इच्छा की कि नीलांचल चले जाए तो भगवान ने सारा बंदोबस्त नीलांचल जाने का कर दिया। माधवेंद्रपुरी पास जी ने थोड़ी सी इच्छा की कि ये गोपीनाथ जी का खीर हम खा के देखेंगे कैसा है, तो गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुरा के रख दी। ये लोगों की तो बड़ी बड़ी लीला है, लेकिन हम लोगों की शिक्षा है कि भाई मेरे भक्ति में कभी भी संसार की इच्छा मत करना, पता नहीं कितने जन्म पीछे पड़ जा सकते हो। इसके साथ ये स्थान वही है जहाँ पे गीत गोविंद लिखा जय जय गोस्वामी जी ने, और ये गीत गोविंद की लाइन, ये गीत गोविंद का वो तमाम, ये गीत गोविंद का वो दृश्य जो कि हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। हमारे गुरु महाराज जी उसके लिए बहुत ही उत्कंठित होकर बहुत ही भाव गर्वित होकर इस चीज का वर्णन करते हैं। जय जय गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, समाधि भाषा में लिख रहे हैं। सारी की सारी लीलाएं उनके आंखों के सामने उनके हृदय में स्पष्ट आती हैं और उसको बड़े सुंदर कवि के रूप में वो लिखते चले जा रहे हैं। एकदम देखते हैं राधा रानी मान में पड़ी हुई है और जबरदस्त मानवती हुई पड़ी है, कृष्ण मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रही है। कृष्ण का मनाने का जो सारे के सारे हथकंडे हैं वो फेल हो गए। राधा जी का मान इतना प्रबल,
उस समय कृष्ण हार गए, उन्होंने अपनी बंसी उनके चरणों पे रख दी, उन्होंने अपना मुकुट उनके चरणों पे रख दिया। देख रहे हैं कहते गोस्वामी ये लिख नहीं रहे, ये देख रहे हैं, देख के हिल गए। क्या हिल गए कि जो त्रिभुवन के मालिक है इतना समर्पण कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और देखते हैं कि अपना सिर झुकाकर राजा जी के चरणों में रखने जा रहे हैं, लगता है वो देख ही नहीं पाए इस बात को और एकदम झटक के उठ गए, क्या मैं सही देख रहा हूँ या माया का प्रभाव को लेकर मैं नहाने जाता हूँ। और ऐसा कहकर वो बोलते हैं मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और चले गए स्नान करने। उसी समय जयदेव गोस्वामी जी बनकर हमारे कृष्ण माधव अंदर प्रवेश किए, बोलते हैं मेरे मस्तिष्क में एक पंक्ति याद आ गई, मैं लिखना चाहता हूँ, फिर नहाने के लिए जाऊंगा। और क्या किया उन्होंने, कॉपी मंगाई, पद्मावती से कॉपी मंगाई, यहाँ लिख रहे थे, वहां पे उन्होंने वो पूरी लाइन की मर गर्ल खंडनम मम कीर्ति वंदनम, तुम्हारा विरह, तुम्हारा ये मान का विरह मेरे अंदर जहर जहर की तरह घुसा चला जा रहा है, मुझे जला के खाक कर देगा, तुम इस मान को हटाओ, मैं अपने सर को तुम्हारे चरणों में रखना चाहता हूँ, तुमने तो चरण भी छुपा रखी, लाओ चरण कहाँ है, वे उदार राधे अपने चरण मेरे मस्तक पे रख दो। इस तरह का वर्णन जो जयदेव गोस्वामी जी खुद नहीं हो लिख सके, उसको कृष्ण ने आकर बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख दिया, जिसको हमारे महाराज जी ने श्याम रानी जी को प्रेरणा देकर एक सुंदर सेवा कुंज बनाया है वृंदावन में है, और उसके नीचे ये लाइन रखी है कि किस तरह से कृष्ण जो है वो राजा रानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका प्रेम इतना प्रबल है, राजा रानी का प्रेम और मान इतना प्रबल है कि कृष्ण जैसे मत हाथी को भी छुपा देते हैं। ओके बेटर वो कह रहे हैं देर करो अभी प्रेमानंद
আপনারা বসুন, সবাই বসিলাম, চলে যাবেন না, বসুন বসুন, আপনারা যারা এসেছেন প্রাচীন মন্দিরে প্রণাম করেছেন, যারা মহিলা আগত আগত তারা গৌরবাবার বলুন কলাই গোলাম গলা ভাই রে
Prabhu, we're going to the next place. I'll call you back.
Gauruga Nadar Jaya, Gauruga Nadar, Gauruga Nadar Jaya, Gauruga Nadar Jaya.